नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। श्री मोदी की भूटान की दो दिन की यात्रा संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वे बोत्सवाना के संसद को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत कनाडा के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और सुदृढ़ करने का इच्छुक। श्री जयशंकर ने कनाडा, मैक्सिको और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिली। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत 9 सूत्रीय कार्य योजना लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक और चौथे ड्रुक ग्यालपो के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समारोह महामहिम जे खेनपो की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिससे ये और भी विशेष बन गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से आज शाही मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने थिम्फू में कालचक्र समारोह में भाग लिया, जिसमें भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक भी शामिल हुए। औपचारिक अनुष्ठान मैदान में प्रधानमंत्री ने शाही परिवार के साथ बातचीत की और राजा जिग्मे खेसर वांगचुक के साथ कालचक्र समारोह के लिए एक तख्ती का उद्घाटन किया। जे खेनपो पवित्र कालचक्र दीक्षा समारोह की शुरुआत करने के लिए चांगली मिथांग स्टेडियम आए हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्फू।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश के साथ कल थिम्फू में बैठक के बाद भूटान की ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए 4,000 करोड़ रूपए की रियायती ऋण सहायता देने की घोषणा की। बैठक में दोनों पक्षों ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने 1020 मेगावाट की पुनाकांक्षो द्वितीय पनबिजली परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5-year plan के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे के साथ बातचीत भी की। दोनों नेताओं ने 1200 मेगावाट की पुनासांगशु प्रथम बनबिजली परियोजना के मुख्य बांध का कार्य फिर शुरू होने का स्वागत किया और इसके समय पर पूरा होने को लेकर सहमति व्यक्त की। ये परियोजना पूरी होने पर भारत तथा भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न कर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच अब से कुछ देर में स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। बोत्सवाना भारत को परियोजना चीता के अंतर्गत 8 चीते उपहार स्वरूप देगा। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इन चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू सांसदों को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और बोत्सवाना में ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का दौरा करेंगे। बोत्सवाना के कई गणमान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं। लाल किला भी कल तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कनाडा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए सुश्री आनंद को बधाई दी और नए रोडमैप 2025 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस द्विपक्षीय साझेदारी के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करता है। डॉक्टर जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रामोन डे ला फुएंतेस से भी मुलाकात की और व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ब्रिटेन के विदेश सचिव यविट कूपर से मुलाकात में डॉक्टर जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भारत ब्रिटेन विजन 2035 की पुष्टि की। कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान विल्टफुल और दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला से भी मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री से भी भेंट की। भारत और क्यूबा ने आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में राजधानी हवाना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रिटा और क्यूबा के कार्यवाहक विदेश मंत्री गेराल्डो पेनालवर पोर्टल ने बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और रुचि वाले क्षेत्रों में कार्य बढ़ाने के बारे में चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया भारत, जापान और अमरीका के साथ अभ्यास मालाबार 2025 में शामिल हुआ है। ये एक प्रमुख हिंद प्रशांत नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य चार क्वाड देशों के बीच समन्वय और अंतर संचालन को मजबूत करना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता सहित रक्षा खुफिया विभाग के उप निदेशक मेजर जनरल फाम थान खिएट से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग और जहाज निर्माण सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितधारकों के साथ तीसरे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने निर्णायक बहुमत हासिल करने का दावा किया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी संख्या में मतदान के लिए राज्य के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रिकॉर्ड मतदान 2010 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को भी पीछे छोड़ देगा और एनडीए को भारी जीत मिलेगी। इस बीच ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा लगभग 67% मतदान हुआ है।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया, जिससे बिहार के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रहा। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे 2600 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, भौगोलिक प्रसार और नागरिक सैनिकों तथा व्यापारियों के संदर्भ में जनसांख्यिकी के उपयोग का आह्वान किया। नई दिल्ली में दिल्ली रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी और माइक्रोचिप्स के लिए 7वीं पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर विचार कर रही है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
प्रस्तुत है।
रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं, तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।
प्रसारण में आज का दिवस ऐतिहासिक है। ये वही तिथि है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान में विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात की 100वीं कड़ी के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों तथा शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका और आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। श्री धर्मेंद्र के परिवार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में मीडिया और जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहें न फैलाएं और उनकी निजता का सम्मान करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत प्रदूषण रोधी कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में 9 सूत्री कार्य योजना लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने और वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 से 450 पहुंचने के बाद ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया है, जिसके तहत कई प्रतिबंध और दिशा निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो गए हैं। इसमें गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। PS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजधानी के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली NCR क्षेत्र में कक्षा 5 तक के स्कूली छात्रों के लिए अस्थायी रूप से हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित हो रही है। CAQM ने केंद्र सरकार और राज्यों से सार्वजनिक कार्यालयों तथा नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करने को भी कहा है। रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है, पर सिर्फ तभी जब वे धूल और अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त नियमों का पालन करें। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा के फतेहाबाद के उपायुक्त को पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू न करने पर नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार पूर्व के निर्देशों और कई समीक्षा बैठकों के बावजूद 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच फतेहाबाद में पराली जलाने के 59 मामले सामने आए हैं। नवंबर की शुरुआत में इन मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए आयोग ने उपायुक्त से 17 नवंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश के साथ कालचक्र अनुष्ठान का उद्घाटन किया। श्री मोदी की भूटान की 2 दिन की यात्रा सम्पन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वे बोत्सवाना की संसद को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा भारत कनाडा के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और सुदृढ़ करने का इच्छुक। श्री जयशंकर ने कनाडा, मैक्सिको और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता बेहतर करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के अंतर्गत 9 सूत्री कार्य योजना लागू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।